ॐ ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशमृगवरवेतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानम् विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महंतं गोविंदयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदिदिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ॐ शान्तिः 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 शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ नमो हराय हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ नमो हराय हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ नमो हराय हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ नमो हराय भवाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ नमो भवाय भवाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ नमो भवाय भवाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ नमो भवाय भवाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ नमो भवाय मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ नमो मृडाय मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ओम नमो मृडाय मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम नमो मृडाय मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम नमो मृडाय शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय भज मन शिव शिव निरंतरम जप मन शिव शिव निरंतरम भज मन शिव शिव जप मन शिव शिव निरंतर रट मन शिव शिव निरंतर स्मर मन शिव शिव निरंतर रट मन शिव शिव स्मर मन शिव शिव निरंतरम् ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव ओम 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 श्री विद्यारण्य मुनि जी द्वारा विरचित पंचदशी के तत्व विवेक नामक प्रकरण अंतर्गत साठवां श्लोक धर्म मेघमिमं प्राहु समाधिं योगवित्तमः वर्षत्ते सयतो धर्मा मृतधारा सहस्रशः अमुना वासना जाले निःशेषं प्रविलापिते समूलोन्मूलिते पुण्य पापा हे कर्म संचये वाक्यम प्रतिबद्धम सत् प्राक् परोक्षावभासिते करामलकवद्बोधम अपरोक्षम प्रशूयते परोक्षं ब्रह्म विज्ञानं शाब्दं देशिकपूर्वकं बुद्धिपूर्वकृतं पापं कृष्णं दहति बन्निवत् अपरोक्षात्मविज्ञानं शाब्दं देशिकपूर्वकम् संसारकारणाज्ञातौ संसारकारणाज्ञाना तमसश्चण्डभास्करः इत्थं तत्त्वविवेकं विधाय विधिवन् మనః సమాధాయ విగలిత సంశ్రిత బంధః ప్రాప్నోతి పరం పదం నరో నచిరాత్. तो विचार चल रहा है वेदांत श्रवण का फल क्या होगा. तो कई प्रकार के फल बता रहे हैं. श्रवण मनन निधिध्यासन ध्यान और समाधि. वेदांत के ये पांच अंग हो गए. मनुष्य वेदांत श्रवण के अधिकारी होने के बाद श्रवण करे, श्रवण के बाद मनन करे, मनन के बाद निधिध्यासन करे, निधिध्यासन के बाद ध्यान हो, ध्यान के बाद समाधि हो. समाधि का फल क्या है महाराज? अनादो इह संसार है, अनादिकाल से प्रवाह के रूप में प्रवाहित हुआ हुआ ये जो संसार है, इस संसार में हम भी अनादिकाल से प्रवाहित हो रहे हैं. और अनादिकाल से ही कर्म करते आए हैं. यही जन्म में हमने जितने कर्म किए हैं उनका ही हमारे पास हिसाब नहीं है. तो इससे पहले पहले के जन्मों में जो कर्म किए हैं उसका हिसाब का तो हमारे पास कोई प्रश्न ही नहीं बनता. लेकिन ये नहीं समझ लेना कि उन कर्मों का हिसाब आपके पास नहीं है तो उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं समझ लेना. उन कर्मों का जहां हिसाब है उस हिसाब के चलते उन कर्मों के साथ आपका संबंध है, उन हिसाब को आपने चुकाना पड़ेगा. लेने का हिसाब है तो लेना पड़ेगा और देने का हिसाब हो तो देना पड़ेगा. नहीं महाराज, हम न लेना चाहते हैं नहीं देना चाहते. हम अब अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं. तो आप यदि सर्वथा अकाउंट क्लोज करना चाहते हो तो आपको वेदांत श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ध्यान और समाधि. तो समाधि तक आपको पहुंचना पड़ेगा, तभी जाकर आपका हिसाब, आपका अकाउंट क्लोज होगा, खत्म होगा. फिर आपके साथ उन कर्मों का कोई संबंध नहीं रहेगा. ये 59वें श्लोक में विद्यारण्य मुनि जी वही बात बता रहे हैं भाई. अनादौ इह संसारे संचिता कर्म कोटाया. कर्म के तीन भेद हैं, ये आप लोगों को बार बार बताया है. जिस समय आप कर्म करते हो तो अभिमान पूर्वक कर्म करने पर वो कर्म क्रियमाण होता है. क्रियमाण से जो कुछ दृष्ट है वो तो तुमको उसी समय भोगने को मिलेगा, लेकिन जो अदृष्ट है वह संचित हो जाएगा. और जो संचित है वो कहीं ना कहीं जमा रहता है,
वही संचित जब प्रारब्ध बनता है तो तुम किसी भी जन्म में उसको भोगना पड़ेगा। भोग काल का जो फल भोग काल का कर्म है वह प्रारब्ध है, जिस समय कर्म किया वह क्रियमाण है, बीच के समय में जो किए हुए कर्म का जो संचयन है उसको संचित कहते हैं। यहां निर्विकल्प समाधि का फल यह बताया है कि अनादि काल से तुम्हारे जितने भी कर्म संचित होकर बैठे हैं, चाहे वह शुभ हो चाहे अशुभ हो चाहे मिश्र हो। आप सुन ही रहे हो कर्म तीन प्रकार के हैं, शुक्ल कृष्ण और मिश्र। शुक्ल कर्म का फल स्वर्ग आदि भोग की प्राप्ति, कृष्ण कर्म का फल नरक आदि भोग की प्राप्ति, मिश्र कर्म का फल मनुष्य योनि में श्लोक में भोग। ये तो आप लोगों ने कई बार सुना ही है। तो अनेना संचिता कर्म कोटया, जब से आपने कर्म करना आरंभ किया तब से लेकर आज तक का अर्थ जब तक आपको निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति न हो तब तक जो संचित कर्म थे वो सब विलयम, अनेन विलयम यान्ति, वो सारे कर्म विलीन हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। संचित कर्म ध्यान देना, और संचित पुण्य भी नष्ट होगा और संचित पाप भी नष्ट होगा। शुद्धो धर्म विवर्धते, और दूसरा फल होगा शुद्ध धर्म की अभिवृद्धि होगी। यहां शुद्ध धर्म का अर्थ सत्कर्म जन्य धर्म नहीं समझ लेना, पुण्यकर्म नहीं समझ लेना। यहां शुद्ध धर्म का अर्थ होता है जो वेदांत में बार बार अखंडाकार वृत्ति शब्द से कहा जाता है, जिसको ब्रह्माकार आकारित अखंड वृत्ति कहा जाता है। उस अखंड वृत्ति की उत्पत्ति यानी प्राकट्य हो जाएगा, प्रादुर्भाव होगा। तो महाराज जी आपने किस आधार से कह दिया कि निर्विकल्प समाधि के माध्यम से जीवात्मा के अनादिकाल से किए हुए संचित कर्म पुण्य और पाप नष्ट हो जाते हैं, इसका आधार क्या है? आप इसे कल्पना से कह रहे हो कि इसका कोई प्रमाण है? तो बहुत प्रमाण है। विद्यते हृदय ग्रंथि चिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। निर्विकल्प समाधि में जब स्वरूप साक्षात्कार होता है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम्। महर्षि पतंजलि ने निर्विकल्प समाधि की अवस्था का बता दिया। उस समय समाधि योगी, समाधिस्थ योगी अपने ही स्वरूप में अवस्थित रहता है, यानी स्वरूप का अपरोक्ष होता है उसको। वो स्वरूप क्या है तो बोले परापि अवरम यस्मात् स परावर। जिसको सबसे बड़ा कहा गया है वो भी छोटा हो जाता है जिसके सामने, परावर। समझे कि नहीं? हम तो अभी यही मान रहे हैं ना, हमसे बड़े सभी देवता लोग हैं, है ना? अब बोले देवता से बड़े कौन है, देवता से बड़े सभी देवताओं से बड़ा इंद्र है। तो इंद्र से बड़ा कौन है, इंद्र से बड़ा ब्रह्मा है, और ब्रह्मा से बड़े विष्णु हैं, विष्णु से बड़े शिव हैं, परमात्मा हैं, ये सब बड़े हैं। बोले ये सब छोटे होते हैं जिसके सामने, बस किसके सामने ये छोटे होते हैं बोलो, कौन होता है भगवान, तुम्हारे सामने है। जब तुम समाधि में जाओगे तब उस समय तुम्हारे सामने ये छोटे होंगे। जब तक तुम निर्विकल्प समाधि में नहीं पहुंचोगे तब तो वही बड़े हैं भाई, क्या है, जब तक तुम निर्विकल्प समाधि में नहीं पहुंचोगे तब तक तो ये ही बड़े हैं, लेकिन जब तुम निर्विकल्प समाधि में पहुंच जाओगे उस समय अपना स्वरूप जो तुम अनुभव करोगे उस स्वरूप के सामने ये सब छोटे हो जाएंगे, तुम सबसे बड़े हो जाओगे। हाँ, ये वेदांत तो बड़ा विचित्र ही है भाई। हाँ, तुम्हारी गलती से तुम छूटे हुए हो, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम हम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, पंचदशी की प्रक्रिया से पहले प्रकरण से ही तुम्हें बार बार समझा रहे हैं, चिदानंदमय ब्रह्म वो सच्चिद आनंद अद्वितीय जो ब्रह्म तत्व है वह मलिन सत्व में प्रतिबिंबित होने के बाद उस मलिन सत्व अर्थात कारण शरीर को ही ये मेरा स्वरूप है ये तुमने जो निश्चय करके बैठ गए, आभास को असली जो मान लिया, आभास है? ये पढ़ी रहे हो तुम लोग, मलिन सत्व में प्रतिबिंब, ब्रह्म चैतन्य का प्रतिबिंब, ब्रह्माभास, चिदाभास, आत्माभास, उसी को ये मेरा असली स्वरूप है करके तुम बैठ गए, तो तुम प्राज्ञ बन गए। और बाद में प्रक्रिया बताया कि सूक्ष्म शरीर में यही मेरा स्वरूप है करने लग गए, तेजस बन गए, अन्नमय आदि कोश स्थूल शरीर में आकर यही मेरा स्वरूप है कहने लग गए तो विश्व बन गए। यही तुम्हारी गलती है, इसी गलती के कारण क्या हो गया, ब्रह्म से तुम छोटे हो गए। अब तुम यदि निर्विकल्प समाधि में चले जाओगे तब तत्त्वमसि महावाक्य के द्वारा विरोधांश उपाधियों का त्याग कर दोगे तो उपाधि तो चली गई, तुम्हारा व्यष्टि स्थूल उपाधि चला गया, तुम्हारा व्यष्टि सूक्ष्म उपाधि चला गया, तुम्हारा कारण उपाधि चला गया, तीनों उपाधि चले गए, तो फिर तुम्हारा तो ब्रह्म रूप तो है ही है। निर्विकल्प समाधि में तुम्हें अपना वो ब्रह्म स्वरूप का अपरोक्ष होगा, तब परिणाम क्या होगा, संचय कर्म कोटय अनेन विलयम यान्ति, तो उसी को उपनिषद में कहा, मुंडक उपनिषद में है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ति सर्व संशयाः छीयन्ति चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि पराबरे अस्य च कर्म पराबरे दृष्टि सति अस्य कर्माणि छीयन्ति। और ये बात उपनिषद में, मुंडक उपनिषद में कहा, मुंडक उपनिषद में दूसरी श्रुति ने कह दिया है, यदा पश्य पश्यते रुक्मवर्णम कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिं तदा विद्वान् पुण्य पापे विदुय निरंजनं परमं साम्यमुपैति। ये देख लो, तदा उस समय में वह विद्वान, समाधि लाभ करने वाला वह विद्वान स्वरूप ज्ञानी, वह पुण्य पापे विदुय, उसके जन्म जन्मांतर में किए हुए पुण्य और पाप सब दोनों ही खत्म हो जाएंगे, मिश्र भी खत्म हो जाएंगे, ये उपनिषद में बहुत जगह कर्म नष्ट होने की बात कही है, लेकिन कब तो कंडीशन वही रखा, शर्त वही रखा है, यदा पश्य पश्यते रूपम वर्णम, जब दृष्टा अपने स्वरूप को देखता है तब उस समय उसके पुण्य पापे विदोय निरंजनम परमम साम्यम उपेति। सम शब्द का अर्थ ब्रह्म होता है, ब्रह्म भाव अर्थात साम्य भाव को प्राप्त करता है। ये तो हो गया श्रुति का प्रमाण। विद्यारण्य मुनि जी कहते हैं इसी के आधार में भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय शिष्य सखा अर्जुन को उपदेश करते हुए कहा है, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा कुरुते अर्जुन। हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा उसके समस्त कर्म भस्मभूत हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो निर्विकल्प समाधि में जिस ज्ञान की बरसत तेस सहस्र सा है ना, शुद्धो धर्म विवर्धते, अखंडाकाराकारित वृत्ति का जब उदय होता है, वो ज्ञान के द्वारा उस जीवात्मा के ज्ञानी के ध्यानी के निर्विकल्प समाधि का अनुभव करने वाले का चीयंतया सारे कर्म दग्ध हो जाते हैं, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते। श्रुति स्मृति के आधार पर विद्यारण्य मुनि जी कहते हैं कि हमने ये बात कही है कि निर्विकल्प समाधि का अनुभव करने पर अनादिकाल से इस संसार में जीवात्मा के ज्ञात अज्ञात सभी कर्म जो संचित में हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। इसके लिए प्रमाण है, धर्म मेघमिमं प्राहु समाधिम योग वित्तमाह वर्षत्येष यतो धर्म अमृतधारा सहस्रश। उस निर्विकल्प समाधि में एक मेघ की तैयारी होगी, मेघ माने बादल, वो होगा धर्म मेघ समाधि। इस समाधि को योगियों ने योगवित्तमा, योग में सर्वोत्तम ज्ञाता योगी लोगों ने उस निर्विकल्प समाधि को धर्म मेघ कहा है। उस समाधि का नाम क्या रखा है? धर्म मेघ समाधि। जैसे लोक में मेघ, आकाश में जब मेघ आते हैं मानसून के बादल, वो कहीं न कहीं बरसते हैं, समझे कि नहीं? ये बात अलग है कि यहां न बरसे, कहीं न कहीं तो बरसेंगे ना, चौमासे के मानसून के बादल बरसे बिना नहीं रहते, क्योंकि समुद्र से इतना पानी का वो लेकर निकलते हैं, उसको तो कहीं न कहीं विसर्जन करना ही है। तो जैसे बादल अवश्य कहीं न कहीं बरसते हैं, इसी तरह श्रवण मनन निदिध्यासन ध्यान और समाधि के द्वारा प्राप्त हुआ हुआ जो धर्म मेघ है समाधि, वह वर्षता है। इमं समाधिम योग वित्तमा धर्म मेघम आहु, इस समाधि को योगियों ने धर्म मेघ का। वर्षत्येष यतो धर्म अमृतधारा सहस्रशः, जिससे अमृतधारा सहस्र अमृतधारा वर्षते हैं। बादल कोई एक बूंद तो गिराएगा नहीं है? आकाश में जब काले काले घना मेघ आएंगे, वह मेघ जो वो बादल धरती में केवल एक बूंद पानी गिरा के तो जाएंगे नहीं, वो जब भी गिराएंगे तो धारा का धारा सहस्र हजारों अनगिनत जलधारा का प्रवाह छोड़कर जाएंगे। इसी तरह यह निर्विकल्प समाधि धर्म मेघ है, वह हजारों हजारों अनंत धर्म मेघ तो अमृत धारा। फिर कभी जन्मना न पड़े, फिर कभी मरना न पड़े, ऐसे अमृत का धारा वह समाधि बरसाता है, मेघ बरसाता है। योगवित्तमों ने कहा है, कहां तो दो जगह ये बात आई है। एक तो अथर्व उपनिषद में, अथर्व शिखो उपनिषद, हाँ उसमें ये बताया गया है, क्षणम एक स्थान आस्थाय क्रतु सहस्र तस्यापि ही। कोई व्यक्ति श्रवण मनन निदिध्यासन ध्यान धारणा के माध्यम से एक क्षण भी यदि वह निर्विकल्प समाधि में पहुंचता है तो उसका विफल होगा कि वह क्रतु सतस्यापि सौ अश्वमेध यज्ञ बराबर का उसको पुण्य प्राप्त होता है। एक सेकेंड भी निर्विकल्प समाधि में यदि कोई पहुंच गया तो उसका परिणाम होगा क्रतु सत सौ अश्वमेध यज्ञ का पुण्य उसको प्राप्त होता है। देखो कितना फल है समाधि का, और एक सेकेंड की समाधि का इतना फल है। तो तुम जब अभ्यास के द्वारा नित्य स्थायी समाधि में चले जाओगे, स्वरूप साक्षात करोगे, उसके बाद तो पुण्यों का तो कहना क्या है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने भी अपने योग सूत्र में कैवल्यपाद में बड़ा ही सुंदर ढंग से इस समाधि का वर्णन कर दिया है। अप्रसंख्याने अप्यकुशीदस्य सर्वथा विवेक ख्याते है धर्ममेघ समाधि। जब योगी योग साधना के माध्यम से जब निर्विकल्प समाधि में जाता है तो वहां विवेक ख्याति, उस विवेक ख्याति का मतलब स्पष्ट अपने स्वरूप का अनुभव जब करता है तब उसको धर्ममेघ समाधि, धर्ममेघ समाधि का अनुभव होगा, वो समाधि का अनुभव होगा। उस समाधि को, निर्विकल्प समाधि को महर्षि पतंजलि ने भी धर्ममेघ शब्द ही प्रयोग किया है। और महर्षि पतंजलि ने जब उस समाधि को धर्म में कहा है तो हमने भी उसको धर्म में एक शब्द दिया है। तो यह हमारी नई कल्पना नहीं है, आचार्यों ने जो कहा है उसी की हमने व्याख्या की है। आगे कहते हैं, अमुना वासना जाले निशेषम प्रविलापिते समूलोन्मूलिते पुण्य पापाख्ये कर्म संचये। तो अमुना उस निर्विकल्प समाधि के द्वारा वासना जाले निशेषम प्रविलापिते, अनंत अनंत जन्मों के जो चित्त में पड़े हुए वासना है वो वासना भी प्रविलापिते, जैसे बीज में बीज वासना रहता है। ध्यान देना, हम किसी अनाज को ये फलाने अनाज का बीज है कहते हैं कि नहीं। मान लो गेहूं का जो बीज होगा उसको हम क्या कहेंगे, ये गेहूं का बीज है। मकई का बीज होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ये मकई का बीज है। धान का बीज होगा तो हम क्या कहेंगे? धान का बीज है। जौ का बीज होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? जौ का बीज है। है? आप बंबई वासियों को बीज का प्रयोग करते हो कि नहीं? कहां खेती करना है बीज का प्रयोग करोगे? कदाचित गमलों में है, तो कभी कभी आप लोग जो है ना तुलसी का बीजारोपण तो करते होंगे, है ना? परसों एकादशी चली गई, पुरुषोत्तम मास लगने से पहले एकादशी गई, उसमें से उस एकादशी का नाम ही तुलसी बीजारोपण, उसमें बीजारोपण करते हैं। अब आने वाली एकादशी उसमें तुलसी रोपण करेंगे, हैं? उस समय बीज किया तो अब वो पौधा तैयार होगा तो फिर वो पौधा को फिर कैरी में रोपण करेंगे। लेकिन हम लोग इतने बदमाश हैं, कैरी में सीधे ही बीज डाल देते हैं, पौधा रोपण नहीं करते। बीजारोपण करते हैं, पौधा रोपण नहीं करते। जबकि दो एकादशी अलग अलग हैं, एक में बीजारोपण करना है एकादशी को, दूसरे में पौधारोपण करनी है, स्पष्ट लिखा हुआ आता रहता है। हाँ, तो हम बीजारोपण से ही काम चला लेते हैं, पौधारोपण नहीं करते। तो इस समय तो किसान रोपण में खूब लगे हुए हैं, खेती पानी बारिश हो गई है, धान का पौधा तैयार किया, पहले बीज रोपण किया होगा, उसके बाद पौधा तैयार हुआ, अब उस बेड़ में से पौधा निकालेंगे, फिर खेत में पौधा रोपण करेंगे। तो हम कहने जा रहे थे कि जैसे आप लोगों ने बीज को तो जानते हो ना, नहीं देखा हो, अनुभव ना भी किया हो, तो बीज क्या होता है इतना तो आपको पता है ना? मकई का बीज 1 किलो, धान का बीज 1 किलो, गेहूं का बीज 1 किलो, चने का बीज 1 किलो। अब वो 1 किलो 1 किलो 1 किलो 1 किलो जो वजन है ना, वो किसका वजन है? बीज का कोई वजन नहीं होता है, वो मिट्टी का वजन है। वजन किसका है? बीज का कहीं वजन होता है? बीज का वजन नहीं होता है। वजन तो उस बीज में जो पार्थिव तत्व है, जो अनाज बोलते हो तुम, जिसको पीसोगे तो आटा बनेगा, वो क्या है? पार्थिव तत्व है वो। और बीज पार्थिव नहीं होता है, समझे कि नहीं? बीज संस्कार होता है, संस्कार पार्थिव नहीं होता है। मकई का बीज और गेहूं के बीज को पृथक कर रहा है कौन? गेहूं के बीज में गेहूं का जो संस्कार है, और मकई के बीज में मकई का जो संस्कार है, वो संस्कार उस अनाज को बीज के रूप में सुरक्षित रखता है। वो जो पंचभूतात्मक मकई 1 किलो वजन है, उसमें मकई के जो संस्कार होंगे, वो संस्कार को बीज कहा जाएगा। गेहूं 1 किलो, उसमें जो 1 किलो वजन है, उसमें जो गेहूं का संस्कार है, उसको बीज कहा जाएगा। बीज की परिभाषा आप कर लो, तत्त्व संस्कार विशिष्ट पंचभूत को तत्त्व बीज कहा जाता है। अलग अलग संस्कार से युक्त हुए हुए पंचभूतों को क्या कहते हैं? अलग अलग बीज कहेंगे, हैं? जिसमें जिसका संस्कार होगा उस पंच महाभूत को क्या कहेंगे? उसका बीज। जिसमें जिसका संस्कार होगा उस पंच महाभूत को उसका बीज। मकई के संस्कार होगा उस पंच महाभूत में तो मकई का बीज, गेहूं का संस्कार होगा उस पंच महाभूत में तो गेहूं का बीज, धान का संस्कार होगा उस पंच महाभूतों में तो धान का बीज, आदि आदि। चने का संस्कार होगा उस पंचमहाभूत में तो क्या कहोगे? चने का बीज। पंचमहाभूत एक है, पंचमहाभूत एक है और पंचमहाभूत समान है सभी में। पंचमहाभूत में डिफरेंस नहीं होता है, अंतर नहीं होता है। फिर अंतर किस में होता है? संस्कारों में। संस्कार में अंतर होता है और बीज को भिन्न करने वाला वो संस्कार है, समझे कि नहीं? अब वो संस्कार से युक्त तो होगा, उस पंचमहाभूत को जमीन में डालोगे तो जो अंकुर पैदा होंगे बीज से, उसमें वही संस्कार विद्यमान होंगे। फिर उस अंकुर से जो वृक्ष बनेगा, वही संस्कार विद्यमान होंगे। उस वृक्ष से जो फल लगेंगे, उसमें वही संस्कार होंगे। पंचमहाभूत बदलते रहते हैं और संस्कार बदलता नहीं। पंचमहाभूत बदलते रहते हैं का मतलब, बीज से वृक्ष बन गया, वृक्ष से फूल बन गया, ये पंचमहाभूत में ही तो बदलाव आ रहा है। बीज से क्या बना? अंकुर बना। अंकुर से क्या बना? पौधा बना। पौधा से क्या बना? पेड़ बने। पेड़ से क्या बना? फूल। फूल से क्या बना? फिर फल बना, और वही फल फेरी बीज बनेगा। ये पंचमहाभूतों में ये बदलाव आया, संस्कार में बदलाव नहीं आता। वही संस्कार निरंतर चलता रहता है। इसी तरह जीव भी वही संस्कार लेकर चलता रहता है। तो बहुत सुंदर प्रसंग है। आप देख लो, मकई का जो बीज करके तुमने रखा था, उसको यदि तुम थोड़ा सा बर्तन गरम करके उसमें डालकर, उसको गरम करके भूंज दो, किसको? जिस मकई के बीज कह रहे के रखा था, उस बीज को उस बर्तन में थोड़ा भूंज दो, और भूंजने के बाद वो तो ज्यों का त्यों रहेगा। क्या अनाज तो ज्यों का त्यों रहेगा? वजन करोगे ज्यों का त्यों है, हाँ? पंचमहूत तो ज्यों का त्यों है, लेकिन भूंजने पर नष्ट क्या हुआ? पंचभूत तो नष्ट नहीं हुआ भूंजने पर, क्या नष्ट हुआ? बीजत्व का जो संस्कार था वो संस्कार नष्ट हो गया। और भूंजे हुए उस मकई के दाने को जमीन में डालोगे तो अंकुरित होगा, तो क्या गया भूंजने के बाद? बोलो, वही संस्कार गया। यही यहां कह रहे हैं, अभी तक तुम हजारों लाखों करोड़ों बार मरे और पैदा हुए, लेकिन संस्कार नष्ट हुआ क्या? जीवत्व संस्कार नष्ट हुआ क्या? जीव का संस्कार नष्ट हुआ क्या? तो तुम सब कच्चे मकई हो, हैं? फिर मरोगे, फिर अंकुरित होगा, क्योंकि जीव भाव तुम्हारा भूंजा नहीं गया है, नष्ट हुआ नहीं है, संस्कार नष्ट नहीं हुआ है। बार बार शरीर नष्ट होता रहता है, संस्कार नष्ट नहीं होता है, परिणाम क्या होता है? फिर अंकुरित होता है, फिर वृक्ष बनता है, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे जायनम, संस्कार वही रहते हैं। वेदांत श्रवण का फल क्या होगा? बोलो, संस्कार का नाश होगा। तुम्हारे शरीर का नाश नहीं होगा, जैसे मकई, वो बीज वाला मकई भूंजने पर दाना नष्ट नहीं हुआ, कच्चे में भी दाने थे, भूंजने पर भी दाने रहेंगे। भूंजा हुआ चना खाते हो कि नहीं, हैं? बोलो, कच्चे चने भिजा के खाते हो कि नहीं? कच्चे चने भिजाते हो तो अंकुर पैदा होते हैं कि नहीं? भूंजे हुए का नाम क्या है? उसका भी चना, कच्चे का भी नाम चना, कच्चे का भी रूप वही गोल मटोल, भूंजे का भी रूप वही गोल मटोल, ना नाम बदला है, न रूप बदला है। भूजने के बाद गया क्या फिर? किसका? बीजत्व संस्कार गया। अब वो भूजे हुए चने को तुम के पानी में डालोगे तो अंकुर पैदा होगा? क्यों नहीं पैदा हुआ? संस्कार नष्ट हो गए। इसीलिए निर्विकल्प समाधि का अनुभव करने वाले जीव का संस्कार वासना जाल सब नष्ट हो जाते हैं। बस फिर वह जीव का जो संस्कार था वो नष्ट हो जाएगा, जीवत्व नष्ट हो जाएगा। अमुना वासना जाले निशेषम प्रविलापिते समूलोन्मूलते पुण्य पापाख्ये कर्म संचये वाक्यम अप्रतिबद्धम सत् प्राक् परोक्ष्यावभासिते करामलकवद्बोधम अपरोक्षम प्रसूयते। पहले जब वाक्य सुनते समय में गुरु के मुख से तुम लोगों ने जब महावाक्य श्रवण की, उस समय जीवात्मा और परमात्मा की एकता परोक्ष हुई। समझे कि नहीं? लक्षणावृत्ति से जब इस वाक्य का श्रवण किया, जहद अजहद लक्षणा से, तब तुम्हें यह निश्चय हुआ कि चैतन्य में एकता संभव है। ये पक्का हो गया कि नहीं? उपाधि बात करने पर निरुपाधिक चैतन्य में एकता संभव है, ये पक्का हुआ कि नहीं? लेकिन ये परोक्ष हुआ। यही परोक्ष तुम मनन निधिध्यासन ध्यान और समाधि में पहुंचोगे तो वह एकता अपरोक्ष हो जाएगा। समझे कि नहीं? आज हिस्ट्री जब तुम पढ़ते हो, हैं, किसी देश के इतिहास पढ़ते हो, हैं, पुस्तक में, तो वो परोक्ष होता है जब पढ़ते हो, है ना? जब आप अमेरिका, न्यूयॉर्क, मैनहट्टन सिटी आदि की जो स्टोरी पढ़ोगे, पढ़ते समय तो तुमको वो सब सिटी, वो शहर परोक्ष हुआ कि नहीं? लेकिन जब टिकट करके जब वहां पहुंचोगे तो वो सिटी क्या होगा? पहले परोक्ष हुआ हुआ जो सिटी है, शहर है, जब तुम वहां पहुंचोगे तो वह क्या हो गया? अपरोक्ष। गांव वाले बंबई के बारे में सुनेंगे तो बंबई का ज्ञान उनको होगा कि नहीं? लेकिन उनको परोक्ष ज्ञान होगा। जब वह टिकट करके जब बंबई आएंगे तो पहले परोक्ष हुआ हुआ बंबई अब क्या होगा? अपरोक्ष हो गया। सुनते समय में पहले परोक्ष हुआ हुआ जीव ब्रह्म की एकता निर्विकल्प समाधि में तुम पहुंचोगे तो वहां क्या होगा? वो वहां पहुंचते ही अपरोक्ष होगा। वाक्यम अप्रतिबद्धम सत् प्राक् परोक्षावभासिते करामलकवद्बोधम अपरोक्षम प्रसूयते। कर्मे हाथ में लिए हुए निर्मल स्वच्छ जल पानी, वह पानी हाथ की रेखाओं को अभिभूत नहीं कर सकता, ढक नहीं सकता। ढक सकता है? और तुम वही हाथ में गंदा पानी लोगे तो? इसी हाथ में, हथेली में जब तुम गंदा पानी लोगे तो वह गंदा पानी तुम्हारी हाथ की रेखाओं को अभिभूत यानी ढक सकता है कि नहीं? आवृत करेगा कि नहीं? और उस गंदे पानी की जगह तुम स्वच्छ पानी लोगे, अमल का माने पानी, अमल माने स्वच्छ, मल माने गंदा नहीं, गंदा, अमल माने जो गंदा नहीं। अब कंचन निर्मल पानी हाथ में लोगे तो वह पानी क्या तुम्हारे हाथ की रेखा को ढक सकते हैं? परोक्ष बनाएंगे हाथ की रेखा को? पानी होने पर भी रेखाएं स्पष्ट दिखाई पड़ेंगे। करा मलकवत बोधम अपरोक्षम। परोक्षम ब्रह्म विज्ञानम शाब्दम देशिक पूर्वकम बुद्धिपूर्वकृतम पापम कृत्स्नम दहति वन्निवत। जिस समय तुम वाक्य श्रवण करते हो, देशिक माने तुम्हें उंगली दिखाकर ब्रह्म तुम्हारे ही हृदय के तरफ दिखाने वाला, कहां है परमात्मा? बोले तुम्हारे हृदय में देशिक माने इस उंगली का नाम है देशिका, दिखाने वाला उंगली, तुम्हारे तरफ दिखाएगा गुरु। तुम्हारा जहां हृदय है वहीं है, तुम जहां पर हो वहीं है ब्रह्मा। तो इस तरह दिखाने वाला होने के कारण गुरु को देशिक कहते हैं, समझे कि नहीं। तब गुरु के मुख से जब तुम वाक्य श्रवण करते हो तो पहले वाक्य से जो ज्ञान होगा वो परोक्ष ज्ञान होगा। परोक्ष ज्ञान का प्रभाव क्या होगा? बुद्धिपूर्वक कृतम पापम कृष्णम दहति वन्निवत। जान बुझकर किए हुए जितने भी पाप हैं वो सब पाप खत्म हो जाएंगे, समझे कि नहीं। परोक्ष ब्रह्म विज्ञान, जान बुझकर किए गए पाप भी नष्ट हो जाएंगे। तो तुमको परोक्ष विज्ञान तो हुआ ही है, अपरोक्ष भले ही ना हुआ हो, परोक्ष ज्ञान तो हुआ कि नहीं। तुम्हारे जान बुझकर किए हुए पाप आज से नष्ट हो गए, लेकिन गारंटी यह है कि आगे पाप न करना। लेकिन तो भरोसा नहीं है वो, है भरोसा नहीं है। प्रेमपुरी में आकर पांव रख लिया, अनजान में किए हुए पाप नष्ट हो गए। महावाक्य का श्रवण करके तुमने उसका अर्थ ज्ञान कर ली, परोक्ष ज्ञान, जान बुझकर किए हुए पाप भी नष्ट हो गए। मनन निधिध्यासन किए तो तुम्हारे पुण्य भी नष्ट हो गए, और निर्विकल्प समाधि में गए तो सब संचित पुण्य पाप सब के सब नष्ट हो जाएंगे। अपरोक्ष आत्म विज्ञानम शाब्दम देशिक पूर्वकम संसार कारण अज्ञान तमश्चंड भास्कर। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, परोक्ष ब्रह्म विज्ञान से जानबूझकर किए हुए पाप भी नष्ट हो जाएंगे, लेकिन मूला विद्या नष्ट नहीं होगा, संसार का कारण नष्ट नहीं होगा, दोबारे पाप करने की कारण नष्ट नहीं होगा, दोबारे पाप करने की वासना नष्ट नहीं होगी। जो किए हुए नष्ट हो जाएंगे, लेकिन दोबारे करने की संभावना तो ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि कारण रहेगा तो कार्य फिर हो सकता है। लेकिन जब निर्विकल्प समाधि में तुम चले जाओगे तो वहां जब ब्रह्म का आत्मा का अपरोक्ष अनुभव होगा तब वो संसार के कारण जो मूला विद्या है वह मूला विद्या भी समूल नष्ट हो जाएगा। जैसे मध्यान्ह काल में प्रचंड सूर्य के सामने अंधकार का कोई अंश नहीं रहता है, इसी तरह निर्विकल्प समाधि में जब तुम्हारे अपने ही ब्रह्म स्वरूप का अपरोक्ष ज्ञान होगा तब फिर वो मूला विद्या भी नष्ट हो जाएगा। संसार कारण अज्ञान तमश्चंड भास्कर, तमसच चंड भास्कर, प्रचंड सूर्य की तरह वो मूला विद्या अज्ञान सारे अनर्थ का कारण वो सब भी नष्ट हो जाएंगे। इत्थम, आज गाड़ी फास्ट है, इस्तम इत्थम, इस प्रकार से पहले प्रकरण से तत्व विवेक नामक प्रकरण जो शुरू किया था, इत्थम तत्व विवेकम विधाय विधिवन मना समाधाय, विधिपूर्वक नित्यानित्य वस्तु विवेक या मूत्रार्थ फलभोग विराग षड संपत्ति मुमुक्षुता आदि साधन चतुष्टय संपन्न होकर गुरु के मुख से यदि आप इसका ठीक से श्रवण करोगे और मनः विधाय मनः समाधाय अभ्यास करते हुए समाधि में जाओगे, विगलित संसृत बंधा, तुम्हारे संसार बंधन तुरंत गल कर नष्ट हो जाएगा। प्राप्नोति पदम परम पदम नरो न चिरात, अब भी तुरंत ही परम पद की प्राप्ति हो सकती है, इसमें कोई शंका नहीं। आपके बंधन क्यों गले नहीं, इसका मतलब आप अधिकारी पूर्वक श्रवण नहीं कर रहे हैं और कोशिश करते रहना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఏక సూచన, ఆజ్ విశేష కార్యక్రమ హై సంక్షిప్త స్వాధ్యాయ సే పహలే హా తో హమారే గిరీష్ భాయి ఉస్కే సూచనా కరేంగే వో కార్యక్రమ సంపాదన కరేంగే.
హరి ఓం. పూజ్య మహారాజ్ జీ కే పునీత శ్రీ చరణో మే కోటి కోటి వందన. ఆజ్ బడే ఉత్సాహ సే లగ్తా హై కే ఖడే హోకర్ స్టాండింగ్ వందన పూజ్య మహారాజ్ జీ కో పహలే కరే. సభీ ఖడే హోకర్ పూజ్య మహారాజ్ జీ కో ఖడే హోకర్ వందన కరేంగే. ఐసీ వాణీ జో హమే ఉపలబ్ధ హుయీ హై ఉస్మే ఈశ్వర్ కీ బడీ కృపా హై. ఆప్ సభీ బైఠ సక్తే హై. ఆజ్ ప్రేమపురి ఆశ్రమ్ కే సాథ్ పహలే సే జుడే హువే ఐసే హమారే ఆత్మస్వరూప్ పూజ్య మహారాజ్ జీ జో ఏక మహీనే తక్ కా యే యజ్ఞ రూప్ ప్రాతః ప్రవచన హో స్వాధ్యాయ ప్రవచన హో యా సాయం చింతనమాలా గీతా చింతనమాలా మే పూజ్య మహారాజ్ జీ నే జో భీ బాతే హమే బతాయీ. ఏక తో హమ్ అధిక మాస కే పవిత్ర పురుషోత్తమ మాస మే ఉన్కే సాన్నిధ్య మే బైఠే థే ఔర్ ఏక ఏక బాత్ ఐసీ థీ కే బీజ్ కే రూప్ మే హమారే మే యహ చీజ్ హమారీ ఉన్కీ వాణీ బరాబర్ అరూఢ హో గయీ బైఠ గయీ ఔర్ మహారాజ్ జీ సంత్ కే రూప్ మే పౌధే లగాతే రహే. తో యహ జో ప్రేమపురి కా బీజ్ యా పౌధా హమారే మే ఐసే సంత్ ఆతే హై ఔర్ జో హమే కృతకృత కర్తే హై కి ఉస్ ఉన్కీ వాణీ సే ఉన్కే దర్శన సే ఉన్కే ఆశీర్వచన సే ఇస్కే హమ్ సౌభాగ్య మానతే హై. హమారా ప్రేమపురి కే సత్సంగి హోనే కే నాతే స్వాధ్యాయ హోనే కే నాతే సాయం ప్రవచన కే మాధ్యమ సే భీ హో హరేక రూప్ సే ఇస్ పౌధే కో జితనా భీ హమ్ సమాజ్ కే లియే రాష్ట్ర కే లియే విశ్వ కే లియే కహీ నా కహీ హమ్ ఉపయోగ మే లాయేంగే తో యహ జో గురు వందనా హమ్నే అభీ ఖడే హోకర్ కీ ఉస్కా హమే ప్రమాణ మిలేగా కి హమ్ కుచ్ ఏక అచ్చే నాగరిక హై ఔర్ ఉస్కా పూరా శ్రేయ ఐసే సంత్ మహాత్మా కా హై కి జో యహ హమారే బీచ్ మే ఆతే హై సాలో సాల్ ప్రవచన స్వాధ్యాయ అన్య వ్యాఖ్యానో కే మాధ్యమ సే హమారే బీచ్ మే రహతే హై. బడీ తక్లీఫ్ మే నేపాల్ నే భూకంప్ ఝేలా దునియా భర్ సే ఉస్కే ప్రత్యాఘాత్ మిలే కుచ్ ప్రేమపురి కే సత్సంగీ హోనే కే నాతే ఆప్ కే సాథ్ జుడా హువా హూం మే తో మహారాజ్ జీ కే సాథ్ భీ ఫోన్ సే యహీ ప్రతిక్రియా రహీ కి హమారే సత్సంగీ స్వాధ్యాయీ సబ్ బడే బేచైన్ హై కి మహారాజ్ జీ ఆప్కీ స్వస్థతా కే లియే ఆప్ జో భీ యహాం ఆశ్రమ హై ఉన్కే లియే ఔర్ ఈశ్వర్ కి బడీ కృపా రహీ కి బాకీ ఉన్హోకే పాంచ్ ఆశ్రమ మే సే దేవగఢ్ మే కుచ్ కాఫీ క్షతి హుయీ బాకీ జస్ సబ్ జగహ్ అచ్చీ రీత సే సబ్ రహే. ఫిర్ భీ జో భీ వహాం శిష్యగణ హై జో ఉన్కో వో సిఖాతే హై కహీ నా కహీ ఉన్కో ఉన్కే పరివార్ కే సాథ్ జ్యాదా తక్లీఫ్ ఆయీ కహీ రహే కహీ నహీ రహే ఐసే సబ్కో హమ్ యహాం సే ఉస్ దిన్ తో హమ్నే ఖాస్ ప్రార్థనా ఈశ్వర్ కే నామ్ సే 2 మినిట్ కే లియే కీ థీ తో ఉస్కో హమ్ చాహతే హై కి కుచ్ నా కుచ్ హమ్ భీ కరే. ఇస్ రూప్ సే ప్రేమపురి ఆశ్రమ్ నే భీ యహ భూకంపగ్రస్త జో నేపాల్ మే మహారాజ్ జీ కే ద్వారా థోడా వహాం నుకసాన్ హువా హై ఉస్కే రూప్ మే సంస్థా ద్వారా 1 లాఖ్ కా చెక్ హమ్నే కియా హై. మే చాహూంగా బేటీ ఉమా ఆకే మేరే సాథ్ ఆయేంగీ ఔర్ హమ్ దోనో దేంగే కుచ్. मेरी इच्छा थी कि तिजोरीवाला जी साथ में आए, मगर उनकी अवस्था देखते हुए मैंने उनको तकलीफ नहीं दी, माफ करना। जो मूल्य मुख्य कार्य हम करने जा रहे हैं, 20 साल से जिनको हम सालों साल में 30-35 साल से पूज्य महाराज जी यहां पधार रहे हैं और उनकी पुनीत वाणी का हमें लाभ मिल रहा है, मगर उनके परम शिष्य मोहनीश जो अभी नहीं आए, उनके बड़े प्रयत्न से हम स्वाध्याय प्रवचन एवं स्वयं प्रवचन उसको पूरी रीत से यह बहुत ही सुंदर अद्वैत वेदांत, यह जो आपने लिफ्ट में भी लगाया है, पढ़ा होगा, तो 1995 से लेके आज तक जो पूज्य महाराज जी ने प्रवचन किया है उसकी 2 डीवीडी ऑडियो डीवीडी बनाई गई है और संस्था ने नक्की किया कि उसको खाली जो खर्च होता है उसी रीत से रखे, तो दोनों डीवीडी कुल मिलकर 100 रूपये में अपने को उपलब्ध होगी। और भी है, अगर आपके पास जो पेन ड्राइव 15 GB की हो तो वो 16 GB की हो, अगर वो लेके आएंगे नीचे तो वो फ्री ऑफ चार्ज आपको डाउनलोड किया जाएगा जो संस्था ने नक्की किया है, क्योंकि हमारी यही इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा इनका लाभ मिले। तो हम आप सबकी तरफ से पूज्य महाराज जी को वंदन करते हुए प्रार्थना करते हैं कि इसका पूरा 925 घंटे हमारे दिनकर जी, अच्छा इसमें दिनकर है, दुबे है, बलदेव है, सभी का, और मोहनीश तो है ही है, तो वो सभी मिलकर और हम श्रोता वर्ग है, क्यों हमारे लिए तालियां न बजाए। तो 925 घंटे का यह जो पूज्य महाराज जी द्वारा अद्वैत वेदांत आत्मवंदना मैं तो कहूंगा, क्योंकि पूज्य महाराज जी द्वारा है तो इसका नाम होना चाहिए आत्मवंदना। तो ऐसी सुंदर जो वाणी पूज्य महाराज जी के, उनकी डीवीडी का पूज्य महाराज जी के हाथ से ही, तिजोरीवाला जी अभी आप आ सको तो बहुत बड़ी मेहरबानी रहेगी, आप भी आएंगे महाराज जी के साथ, वह उद्घाटन सालों साल ट्रस्टी के रूप में, सत्संगी के रूप में, जिनका मार्गदर्शन एक वडिल के रूप से हमको हमेशा मिल रहा है। तो पूज्य महाराज जी से मैं भी निवेदन करूंगा कि दोनों मिलकर यह
इसमें टोटल 925 घंटे का प्रवचन है और इसमें विषय हैं पंचदशी, ये 95 में हमने प्रवचन किया था, एक और 2 प्रकरण उस समय के, और 95 में ही प्रवचन हुआ था अपरोक्ष अनुभूति पूरे, और 96 में प्रवचन हुआ था प्रश्न उपनिषद पूरे, 97 में प्रवचन हुआ था राम गीता पूर्वार्ध, 98 में प्रवचन हुआ था राम गीता उत्तरार्ध, पूरे ही राम गीता है अध्यात्म रामायण अंतर्गत, उसी तरह 99 में श्वेतासतर उपनिषद अध्याय 1, केनो उपनिषद पूरा का पूरा, श्वेतासतर उपनिषद अध्याय 2 2003, छांदों के उपनिषद भूमा विद्या 2004, छांदों के उपनिषद दहर विद्या 2005, वेदस्तुति पूर्वार्ध 2006, वेदस्तुति उत्तरार्ध 2007, श्वेतासतर उपनिषद का 3रा अध्याय 2008, श्वेतासतर उपनिषद का 4था अर्थात अंतिम अध्याय नहीं 4था अध्याय 2009, श्वेतासतर उपनिषद अध्याय 5-6, इसी तरह 2010 में प्रवचन हुआ था यही दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम, वो भी पूरा का पूरा है, 2011 में श्रुतिसार समुद्धरणम शुरू किया था, जो लगातार 11, 12, 13 और 14 तक 4 साल लगातार हुआ, प्रवचन हुआ। और 2015 में पंचदशी आरंभ हुआ है, पहला प्रकरण आज पूरा हुआ है। ये हो गया प्रवचनों की श्रृंखला। प्रातः स्वाध्याय में 2006 में भगवत गीता शंकर भाष्य अध्याय 10 और 11, साथ में भगवत गीता शंकर भाष्य अध्याय 18, आठ में ब्रह्मसूत्र अध्याय 1 पाद चौथा अधिकरण 1 से 5, 2009 में ब्रह्मसूत्र स्वाध्याय तीसरा अध्याय पाद 1 से 9 तक, 2010 में ब्रह्मसूत्र स्वाध्याय अध्याय 4 का, 11 से 3-6 पाद तक, 2011 में श्वेतासूत्र उपनिषद अध्याय स्वाध्याय में अध्याय 1 मंत्र से 7 तक, 12 में भगवद गीता शंकरानंदी जो अभी निरंतर चल रहा है अध्याय 3 का श्लोक 19 से 42 तक, 2013 में भगवद गीता शंकरानंदी व्याख्या अध्याय 7 के श्लोक 1 से 16 तक, 2014 में भगवद गीता शंकरानंदी अध्याय 11वां 26 से अध्याय 12 का 4 तक, 2015 में जो अभी चल रहा है भगवद गीता शंकरानंदी व्याख्या 15वां अध्याय का 9 श्लोक से 16वें अध्याय के 5 तक जो आज पूरा होगा, वो इसमें जुड़ जाएगा आज का भी। इसके अतिरिक्त विशेष विशेष प्रवचन यहां होते रहे हैं हमारे से, वह है इसी प्रेमपुरी आश्रम में ही प्रवचन हुआ था, ये हमारे गिरीश भाई के पूज्य पिताश्री हरि भाई, हम जो बच्चू भाई बोलते थे, उनके आग्रह से हमने पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय पर प्रवचन किया था, तो 1998 तो 3 दिन का प्रवचन था, पहला दिन ओम, दूसरे दिन नमः, तीसरे दिन शिवाय। 2000 में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 और 15 गीता चिंतन माला के अंतर्गत हुआ था, 2008 में वेद स्तुति विशेष सायं प्रवचन था गीता चिंतन माला के अंतर्गत ही, 2009 में आत्मबोध गीता चिंतन माला के अंतर्गत ही पूरा गीता आत्मबोध पर प्रवचन हुआ था, 2009 में श्रीमद् योमद भक्त समय प्रिय इस विषय पर मनन क्लास अंतर्गत विशेष प्रवचन हुआ था, 2010 में मनन क्लास अंतर्गत ही गुणातीत विषय पर प्रवचन हुआ था, 2012 में त्रिनेत्रम विशेष सायंकालिक भक्ति संध्या पर मेरा प्रवचन हुआ था, त्रिनेत्रम इस विषय पर हुआ था, 2012 में भगवद गीता श्रीधरी टीका पर दिव्य ज्योति विशेष कार्यक्रम अंतर्गत मेरा प्रवचन हुआ था, 2013 में निर्माण मोह चित्संग दोषा इस विषय पर मनन क्लास अंतर्गत 1 घंटे का प्रवचन हुआ था, 2012 में 12 से 15 तक लगातार शिवानंद लहरी स्तोत्र पर सायं विशेष प्रवचन हुआ, वह पूरे 100 श्लोक की व्याख्या पूरा हो चुकी है। इसके अलावा मांडुक्य कारिका स्पिरिचुअल सेंटर में हुआ था, उसको भी यहां संपदा के रूप में सुरक्षित रखा, विवेक चूड़ामणि और आदिगुरु शंकराचार्य जी का दृग्दृश्य विवेक पर प्रवचन हुआ था, वह भी यहां सुरक्षित रखी हुई है। ये सारी संपदा टोटल 925 घंटे की है, आप इसको प्रेमपुरी आश्रम के वेबसाइट के में जाकर लॉग ऑन भी कर सकते हैं हर विषय को सुनने के लिए, और साथ ही ये सीडी डीवीडी दो डीवीडी में है, 16 जीबी का 100 रूपये में प्रेमपुरी आश्रम आपको उपलब्ध करा रहा है। एक विशेष बात हमारे प्रिय शिष्य मोहनीश ने कहा, इस विषयों पर जिन विषयों पर यह प्रवचन हुआ है इसके ई बुक इसी कैसेट के साथ इंटरनेट बुक रख दिया गया है, आप घर में नेट के माध्यम से कंप्यूटर से इस बुक को निकालकर इसका प्रवचन सुनते भी जा सकते हैं और पढ़ते भी जा सकते हैं। इसमें ई बुक ऐड कर दिया गया है, इस विषय की सारी पुस्तकें इसी कैसेट के अंतर्गत है, उसको आप डाल लो तो प्रवचन भी सुनते रहो, पुस्तक आएगा पुस्तक को भी पढ़ते रहो। ये प्रेमपुरी आश्रम की बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये विश्व संपदा में ये अभूतपूर्व संपदा प्रेमपुरी आश्रम की, ये अपनी निधि संपदा है, वो इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है, ये प्रेमपुरी आश्रम की संपदा है, समझे कि नहीं। हमने तो प्रेमपुरी आश्रम को सेवा की है, हम तो आश्रम की सेवक है, ये उसकी संपदा है, आप इसका उपयोग करें, अपने इष्ट मित्रों को कहें, जिज्ञासुओं को ये साइट बताएं, ये संपदा का उपयोग करके जीवन को धन्य करें और आगे का कार्यक्रम जो होगा आप करते रहें।
मैं निवेदन करूंगा हमारे तिजोरवाला जी से के 2 मिनट के वो भी आशीर्वाद दे।
हेलो, महाराज जी को मेरा सत सत प्रणाम। 925 घंटे अब तो मुझे 925 घंटे तक तो रहना पड़ेगा, अभी मेरी उम्र हुई है 97 साल की, तो मैं समझता हूं कि महाराज जी का आशीर्वाद से हमारा 925 घंटा तो नक्की हो गया। अगर ऐसा हो गया तो मैं 1 घंटा हर रोज घर पे सुनता रहूंगा, तो 925 दिन का तो हमारा आयुष्य भी बढ़ गया है। महाराज जी के चरणों में प्रणाम, ये तो बड़ी बड़ी उपलब्धि है, आज जीवन नहीं अनेक जीवन तक ये पढ़ने का विषय है। ऐसा नहीं है कि 925 घंटे में हमारा काम बन गया, फिर भी महाराज जी ने तो बहुत बहुत बड़ी कृपा करी, सेवा की है अपनी, प्रेमपुरी अध्यात्म भवन में ऐसी अभी तक नहीं हुई है। स्वामी अखंडानंद सरस्वती महाराज जी की भी कैसेट मिलती है, ऐसा जो महाराज जी ने बताया है वैसा अभी तक नहीं हुआ है, तो महाराज जी के चरणों में मेरा प्रणाम। महाराज जी अभी हमारे तो जिथे हमारी सत्संग तो मैंने नहीं छोड़ा है, 50 साल से भी तो मेरा सत्संग यहां चालू है, जब तक चालू रहेगा वहां तक गुरु जी की कृपा, महाराज जी की कृपा, भगवत कृपा, सबके मेरा प्रणाम।
ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, तो 20 साल का है यह पूरा सीडी का डीवीडी का कार्यक्रम, अगले 20 साल हम सब साथ में मिलकर पूज्य महाराज जी के साथ सुने, ऐसे हम ईश्वर से प्रार्थना करते स्वस्थ रूप में। जैसे अभी 97 में बैठे हैं तिजोरवाला जी, हम देखते हैं हमारे वो रुतम्बरा की पूर्णिमा बेन पकवासा 103 साल में, जैसे अभी उनको देखा माइक पकड़ के उसी तरह से वो 15-15, 20-20 मिनट प्रवचन कर सकती हैं, बैठ सकती हैं, तो ऐसी विभूति हमारे बीच में है, तो हमें यह यकीन है कि 20 साल अगले पूज्य महाराज जी के साथ, महाराज जी भी इतने स्वस्थ रहेंगे, महाराज जी तो और भी 20 साल और भी रहेंगे, 40 साल, कम से कम 20 साल का वरदान हमारे सबके लिए तो मांग ही लेते हैं, जो छोटे हो उनके लिए 40 साल मांग लेते हैं, तो
20 साल तो नक्की है,
नक्की महाराज जी आपके 40 की है।
अच्छा,
इतने हम स्वार्थी नहीं है, ये हमारी जो हमारी उम्र भी हम आपको दे दिए। सभी से वंदन करते हुए अभी शांति पाठ होगा। ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति, हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम।